मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 3 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अभिषेक राय लखनऊ उत्तर प्रदेश से, हर्षवर्धन सिंह भोपाल से और वंदना कुशवाहा आपका गांव है बिल्हा जिला पन्ना मध्य प्रदेश से। तो अभिषेक, हर्षवर्धन और वंदना आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे समानांतर सिनेमा के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि जो विजया बैंक है और देना बैंक, ये हमारे यहाँ के 2 बैंक हैं, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट घटना नहीं है, लेकिन इस घटना के माध्यम से जो प्रश्न बनता है वह इम्पॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे हमारे जो बैंक थे उनका बड़े बैंकों में विलय किया जा रहा है और उसके पीछे एक मकसद है। मकसद यह है कि छोटे बैंक घाटे में चल रहे हैं, उनके पास ऋण देने के लिए उतनी पूंजी नहीं है, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि यदि इनका विलय बड़े बैंकों में कर दिया जाए तो इनके पास पर्याप्त पूंजी भी हो जाएगी, ये फंक्शनल बन जाएंगे, इनका प्रबंधन सुधर जाएगा और घाटे से भी उबर सकेंगे, ये मान करके किया जा रहा है। तो इस लिहाज से तो मेंस का प्रश्न बनता है, इस रूप में बनता है कि विलय से क्या फायदे होंगे, क्या आप मानते हैं कि इससे फायदा हो सकता है, तो इस तरह का प्रश्न बनता है। लेकिन मैंने खासकर यहां विजया बैंक देना बैंक का नाम इसलिए भी लिया है कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होते रहते हैं वो दूसरे एग्जामिनेशंस भी देते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बैंक प्रोबेशनरी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो इस तरह की सूचनाएं होती हैं प्री के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, यह एक छोटी सी सूचना थी कह लीजिए। दूसरा, दोस्तों, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि रमाकांत आचरेकर जी नहीं रहे, न्यूज में भी था ये, रमाकांत आचरेकर कौन थे पता नहीं, आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन इन्हें मैं बहुत बड़ा, बहुत समर्पित एक महान गुरु मानता हूं, एक महान गुरु। सामान्यतया जब हम गुरु की बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि वह जिसने ज्ञान दिया हो, और सच है ये ज्ञान ही है लेकिन कुछ अलग तरीके का ज्ञान है। जो रमाकांत आचरेकर थे वे हमारे जो सचिन तेंदुलकर साहब हैं, महान क्रिकेट खिलाड़ी जिन पर भारत गर्व करता है, जो हमारे भारत रत्न हैं, उनके गुरु थे। और देखिए कि जब इनका कल निधन हुआ है तो किन शब्दों में सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित देते, कहते हैं कि अब वो स्वर्ग में पहुंच गए, अब स्वर्ग में भी क्रिकेट का खेल शुरू हो जाएगा। क्या बात कही है उन्होंने, मतलब क्रिकेट के प्रति इतने समर्पित गुरु। तो मित्रों, इस महान गुरु के प्रति मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण में जगह दे, और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं कि गुरु का जो भाव, जो समर्पण उनके अंदर था, उसका कुछ प्रतिशत वह मुझे दे और साथ ही साथ हमारे देश के उन समस्त गुरुओं को दे जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का प्रकाश, सूचना का प्रकाश, प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि थोड़ा सा भी अंश हम लोगों को इस उनका मिल सका तो डेफिनेटली भारत की तस्वीर बदलने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत वक्त भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, उस महान आत्मा को एक बार फिर से श्रद्धांजलि। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में एक आर्टिकल डाला गया है और वो है मुकदमों के निपटान की समय सीमा का मामला। मुकदमों के निपटान की समय सीमा का मामला अक्सर देखिए जुडिशरी पर प्रश्न पूछे जाते हैं और जुडिशरी पर अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे डेफिनेटली अब उसका जो स्वरूप होगा वो थोड़ा सा दूसरा होगा। बहुत लंबे समय तक इसके खासकर जो सक्रियतावाद था उसको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम एक्टिविज्म कहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा रूप बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि जुडिशरी पर लोग अलग अलग तरीके से प्रश्न करने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि जुडिशरी एक तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन का काम भी संभालने लगी है। छोटे छोटे मामले, चाहे वो धार्मिक मामले हो, आस्था के मामले हो, वो भी जुडिशरी के पास जाने लगे हैं। प्रबंधन संबंधी कई आदेश जुडिशरी दे रही है। इसी में से एक मामला है कि किस तरह से अभी कुछ समय में आपने देखे थे कि 3-4 महीने के अंदर की 20-20 साल 15-15 साल 30-30 ईयर्स के बाद और बड़े महत्वपूर्ण मुकदमे, यानी कि सामान्य मुकदमे, बड़े महत्वपूर्ण मुकदमे, ऐसे मुकदमे जिनकी वो देश लगातार देख रहा था, उनके फैसले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि क्या यह न्याय की सही प्रणाली है। इंग्लिश में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर न्याय देने में आप देरी करते हैं तो एक प्रकार से यह न्याय देने से इनकार करने जैसा ही है। एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे दिखाई देता है, तो उसी बात को ध्यान में रख करके यह आर्टिकल आपके लिए प्रोवाइड किया गया है और मैं चाहूंगा कि यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वह है समानांतर सिनेमा। इस विषय को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आपने पढ़ा कि मृणाल सेन नहीं रहे और मृणाल सेन समानांतर सिनेमा के बहुत बड़े निर्देशक माने जाते थे, बहुत बड़े आप यूं कह लीजिए कि कलाकार माने जाते थे। कलाकार उस रूप में नहीं कि वो एक्टर थे, कलाकार इस रूप में कि उन्होंने समानांतर सिनेमा के चेहरे को उकेरा। दरअसल देखिए समानांतर है क्या, जो समानांतर है ये साहित्य में भी यूज किया जाता है, खासकर समानांतर कहानियों के लिए। वहां भी एक आंदोलन चला था या थोड़े समय के लिए एक प्रवृत्ति उभरी थी जिसे कहा गया समानांतर कहानियां। कुछ लोग उसे नई कहानियां भी कह देते हैं, कुछ लोग नई कहानियों के बाद समानांतर कहानियों का दौर मानते हैं। अगर आपने कमलेश्वर जी का नाम सुना हो, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, जो उस समय सारिका नामक मैगजीन्स भी निकालते थे जो कहानियों पर आधारित मैगजीन थी, बड़ी प्रसिद्ध मैगजीन थी, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में रहा हूं जो कमलेश्वर जी के साथ रहे हैं, बातचीत हुई है, इंटरव्यूज हुए हैं और बहुत लंबा दौर साथ में बीता है। कमलेश्वर समानांतर कहानी के वो एक तरह से पुरोधा जैसे माने जाते हैं। दरअसल ये जो समानांतर शब्द है या नई कहानी है, नया सिनेमा है, समानांतर सिनेमा को कुछ लोग नया सिनेमा भी कह देते हैं, कुछ लोग यथार्थवादी सिनेमा भी कह देते हैं, कुछ लोग नव यथार्थवादी सिनेमा भी कह देते हैं, कुछ लोग मार्क्सवादी सिनेमा भी कह देते हैं, है एक ही नाम, अलग अलग है लेकिन है ये एक ही। तो आइए थोड़ा सा इस पर मैं आपको बता देता हूं और याद रखिए कि ये आपके सिविल सर्विस मेंस का हिस्सा भी है, जो कला साहित्य संस्कृति पर जो आपको पढ़ना होता है ना, उसमें यह भी आता है। या आप मत समझिएगा कि मैं कुछ यूं ही ऐसे ही किसी मुद्दे पर बात करने लगा हूं। देखिए, कला के बारे में जब विचार आए तो दो तरह के विचार हमारे सामने आए। पहला ग्रुप ये कहता था कि जो कला है उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, आर्ट इज फॉर आर्ट्स सेक, मतलब कला का और कोई काम नहीं है, बस मनोरंजन होता रहे लोगों का बस। लेकिन एक दूसरी धारा आई, दूसरे विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि नो, आर्ट इज बेसिकली फॉर लाइफ सेक, यानी कि जो आर्ट का उद्देश्य है वह जीवन के लिए है, यानी कि कला को जीवन में कुछ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, वो लोगों को जीवन के बारे में बता सके, जीवन को दिखा सके। मित्रों, जो कार्ल मार्क्स थे, जो विचारक रहे, महान विचारक रहे, जिनके नाम से पूरा का पूरा एक दर्शन शास्त्र विकसित हो चुका जिसे आप मार्क्सवाद कहते हैं, वो इसी दूसरी विचारधारा के थे कि नहीं, जो कला है कला जीवन के लिए होना चाहिए। वो तो कहते थे कि कला एक जबरदस्त हथियार है, वेपन है, और इसके जरिए आप समाज में बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कलाओं के जरिए। तो ये जो समानांतर सिनेमा है, बेसिकली यह आर्ट इज फॉर लाइफ सेक के सिद्धांत को मानता है, यानी कि ऐसा सिनेमा या ऐसा साहित्य, ऐसी कला जो जीवन के यथार्थ को दिखाती है, यानी कि हमारा जैसा जीवन है उस जीवन को वो दिखा रही है। वैसा जीवन नहीं कि जो कल्पनाओं में हमारे है हम उसको दिखा रहे हैं, वैसा जीवन नहीं जो हमने अपने आदर्शों का बना रखा है लेकिन वो इनफैक्ट धरती पर नहीं है। जैसे आप सिनेमा को ही ले लीजिए तो आप देखिए कि सिनेमा के बिल्कुल आपको दो रूप दिखाई देते हैं। सिनेमा का एक रूप वह है जिसे हम कमर्शियल सिनेमा कहते हैं। आपने बहुत से ज्यादातर फिल्में तो हमारे यहाँ कमर्शियल सिनेमा की ही होती हैं और उसी के हीरो जो एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं वो एक तरीके से प्रसिद्ध भी होती हैं, वो ग्लैमरस लाइफ जीते हैं, सेलिब्रिटी बन जाती हैं, क्योंकि वो उनका वर्ग बहुत बड़ा है, वो कला का को एंजॉय करने वाला वर्ग है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है सिनेमा बनाने वाला जो जिंदगी की बारीकियों को दिखाता है, जिंदगी की बारीकियों को, और खासकर जो समानांतर सिनेमा है। देखिए अब इसमें भी दो चीजें हैं, जो हम समानांतर सिनेमा की बात करते हैं वह किस जिंदगी की बारीकी को दिखाता है, किन लोगों की जिंदगियों की बारीकी को दिखाता है, वह खासकर हमारे समाज के ऐसे वर्ग के जिंदगी के बारीकियों को दिखाता है जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनका शोषण होता है, जो गरीबी में बेचारे जी रहे हैं उनका। और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इसी तरह का था, आपको मालूम है। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप श्याम बेनेगल को ले लीजिए। श्याम बेनेगल इसके पूर्वधा हिंदी सिनेमा में, समानांतर सिनेमा की शुरुआत करने वालों में बहुत बड़ा नाम है श्याम बेनेगल। उनकी फिल्म अंकुर देखिए, उनकी फिल्म निशांत देखिए, उनकी फिल्म मंडी देखिए। ये तीनों फिल्में मेरी देखी हुई है क्योंकि मैं समानांतर सिनेमा का बहुत बड़ा पक्ष धर रहा हूं। देखिए कि उसमें कैसे जीवन के उन पक्षों को दिखाया गया है जिसमें करुणा है, जिसमें शोषण है, जिसमें आक्रोश भी है, जिसमें विरोध भी है, जिसमें विद्रोह भी है। ऐसे सिनेमा को देखने के बाद आप बड़े खुश खुश होकर के सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकलते, बल्कि ये सिनेमा आपको कुछ सोचने के लिए बाध्य कर देता है, आपके दिमाग में एक हलचल पैदा कर देता है, आपके अंदर एक गुस्सा पैदा करता है अपनी व्यवस्था के प्रति कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वैसे इसकी अगर देखें तो श्याम बेनेगल से भी बहुत पहले शुरुआत, दो बीघा जमीन वगैरह देखें जिसमें बलराज साहनी साहब ने क्या रोल किया है, उसमें भी यही है, शोषण दिखाया गया है। भारत में ऐसे फिर और आगे नाम है। अगर हम बांग्ला फिल्मों में जाएं तो सत्यजीत रे हैं, ऋत्विक घटक हैं, मृणाल सेन हैं, इन्होंने इसी तरह के सिनेमा को उकेरा। हिंदी सिनेमा में श्याम बेनेगल हैं, गोविंद निहलानी हैं, उनकी फिल्में अगर आपने कभी देखी हो या पढ़ी हो उनके बारे में, या नाम सुना हो, आक्रोश, अर्धसत्य, पार्टी, पार्टी सिनेमा देखी, पार्टी, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक पार्टी हो रही है और उस पार्टी में उच्च वर्ग का के लोग आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, शराबों के दौर पर दौर चल रहे हैं, और वो बात किस पर कर रहे हैं, गरीबों के बारे में, गरीबों को पानी नहीं मिल रहा है और यहां शराब की नदियां बह रही हैं, यहां खाना दुनिया भर का बर्बाद हो रहा है और वो चिंता इस बात पर कर रहे हैं कि यार गरीब हमारे भूखे सोते हैं। पार्टी कितनी व्यंगात्मक फिल्म है, कभी देखिएगा। हो सकता है कि गोविंद निहलानी की फिल्में आपने न देखी हो लेकिन प्रकाश झा की फिल्में तो आपने जरूर देखी होंगी। प्रकाश झा बेसिकली प्योरली तो समानांतर सिनेमा के हम उन्हें नहीं कह सकते, शुरू में उन्होंने कुछ जरूर समानांतर सिनेमा के समानांतर कुछ फिल्में बनाई थी, अब वो थोड़े से कमर्शियल सिनेमा की तरफ झुकाव कर गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्मों में समानांतर फिल्मों के कुछ तत्व देखने को मिल जाते हैं। तो मित्रों कुल मिलाकर यह कि समानांतर सिनेमा का मतलब है समाज के जो शोषित और दबे और कुचले वर्ग हैं उनके जीवन को सिनेमा के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों के सामने लाना, लेकिन जो माध्यम भी जो कला का होगा वो बहुत ही यथार्थवादी होगा। यूं कह लीजिए बहुत सरल शब्दों में कि रियलिस्टिक सिनेमा, यथार्थवादी सिनेमा, उसे ही हम समानांतर सिनेमा कहते हैं। अब समानांतर सिनेमा का थोड़ा सा एक दूसरा रूप, एक बदला हुआ रूप आपको अभी दिखाई देगा जिसे आप आधुनिकतम समानांतर सिनेमा कह सकते हैं या उत्तर आधुनिक समानांतर सिनेमा कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने लंच बॉक्स फिल्म देखी हो, लंच बॉक्स, या चलिए अभी आपने अगर बधाई हो फिल्म देखी हो, जरूर देखी होगी बधाई हो, तो उसमें आपको समानांतर सिनेमा की टेक्निक तो मिलेगी, हालांकि ठीक है पर्पजफुली हम उसे समानांतर सिनेमा नहीं कह सकते, लेकिन समानांतर सिनेमा की झलक ऐसी फिल्मों में हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: विपिन त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, शेख खुर्शीद आलम अस्का ओडिशा से, शुभ विश्नोई बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव दरभंगा बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।